हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सिद्धार्थ का दिल बैठ सा गया था। फटाफट उसे उठाकर मुखिया के घर ले आया और जहाँ पर उसका इलाज किया जाने लगा था। अभी झलक की हालत काफ़ी ख़राब थी। वेल, गांव के वैद्य जी ने झलक का ट्रीटमेंट करने के बाद उसे आराम करने के लिए कह दिया था। साथ ही साथ उसके हाथ पर जो बड़ा सा घाव लगा था उस पर ड्रेसिंग कर दी। झलक अगले दिन काफ़ी देर तक सोती रही और अगले दिन उसकी आंखें तकरीबन सुबह के 11 बजे खुलीं। जैसे ही झलक उठी उसने देखा कि उसके सामने इस वक्त मीरा और सिद्धार्थ खुराना दोनों ही बैठे हुए थे। दोनों ने रात भर उसका ध्यान रखा था। जैसे ही मीरा की नज़र झलक पर पड़ी थी वो तुरंत उसके पास गई और बोली थी, झलक, आई एम सो हैप्पी, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब तुम कैसा फील कर रही हो? तभी झलक अपना सर पकड़कर बैठने की कोशिश करते हुए बोली थी कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और तभी सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला था, आखिरकार हुआ क्या था और तुम्हारे हाथ पर जख्म कहाँ से आया है? क्या सांप ने तुम्हें काटा? तभी झलक को धुंधला धुंधला याद आया कि वो नकाबपोश आदमी था, उसे बचाने के लिए उसने वो सांप का जहर अपने शरीर पर लिया था। उसके बाद उसने सिद्धार्थ से हैरानी से पूछा था, मैं यहाँ कैसे आई? कौन मुझे यहाँ लेकर आया? तभी मीरा ने सारी बातें तुरंत आगे बढ़कर बता दी थीं कि सिद्धार्थ खुराना ही उसे यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि पहाड़ी के पास वो उसे बेहोश मिली थी और शायद उसे सांप ने काटा था। तब जल्दी से सिद्धार्थ बोला, तुम्हारे हाथ पर घाव कैसे आया और तुम्हारा सांप के काटने का इलाज किसने किया? तब झलक बोली, वो तो मैंने खुद ही अपने हाथ पर घाव दिया था, चाकू से काटकर मैंने जहर निकालने की कोशिश की थी। तब मन ही मन में सिद्धार्थ कहीं ना कहीं झलक की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाया था कि वाकई ये कितनी ज्यादा हिम्मत वाली लड़की है। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी लड़के और लड़की को कोई सांप काट लेता तो पूरा का पूरा घर अपने सर पर उठा लेते, लेकिन झलक ने फिर भी हिम्मत से उस वक्त की सिचुएशन को और समझदारी से काम लिया था। फिलहाल ये बातें वो सिर्फ मन में ही सोच सकता था, ऐसे झलक के सामने वो ये बात नहीं कह सकता था। वेल, झलक अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने लगी थी। तब सिद्धार्थ ने उसे आराम करने के लिए कहा कि उसे अब गांव के किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी काम है, जैसे गरीबों को खाना, बच्चों को किताबें बांटना होगा, वो लोग खुद बांट लेंगे। ये बोलकर वो उसे आराम करने के लिए कहने लगा था और फिर झलक ने पूरे 2 दिनों तक आराम किया था और अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। हालांकि उसके हाथ का घाव अभी तक पूरी तरह से नहीं भरा था, लेकिन काफ़ी हद तक 80% ठीक हो चुका था। फिलहाल झलक अब धीरे धीरे उठने लगी थी। जैसे ही उसने 2 दिनों से बाहर जाने से मना कर दिया था तो इसीलिए उसने जो तालाब था उसी के पास उसने मछली पकड़ने के बारे में सोचा। गांव के लोगों ने इस वक्त झलक का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था, उसे समय समय पर सूप पिलाया था ताकि उसके शरीर में कुछ ताकत आए। उसके बाद उसे फ़िश फ्राई करके भी खिलाया जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत मिली थी। अब धीरे धीरे झलक काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी और मछली पकड़ने लगी थी। अब जैसे ही वो मछली पकड़ रही थी तभी उसकी नज़र उस नकाबपोश आदमी पर पड़ी। उस आदमी को वहाँ देखकर झलक हैरान हो गई और तुरंत बोल पड़ी थी कि इस आदमी ने मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ा था, जबकि मैंने उसे सांप से काटने से बचाया था, तो ये आदमी इतना ज़्यादा स्वार्थी कैसे हो सकता है? तभी झलक उस आदमी के पास गई और उसे घूरते हुए बोली, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा स्वार्थी कैसे हो सकते हो? जब मैं वहाँ मर रही थी, बेहोश हो गई थी, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे? उस वक्त झलक को उस नकाबपोश आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो आदमी झलक के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने शर्ट के बाजू को ऊपर करते हुए दिखाने लगा था और बोला था कि मैं तुम्हारी मदद के लिए गांव में किसी को बुलाने के लिए जा रहा था, लेकिन इस वक्त पहाड़ी के ढलान से नीचे गिर गया जिससे मुझे काफ़ी चोट आई। अब ये सुनकर झलक को बड़ी हैरानी हुई और वो थोड़ी देर पहले इस बात के लिए उसे कोस रही थी कि उसने उसकी मदद नहीं की। उसे अब कहीं ना कहीं झलक के मन में भी इस तरह का कोई गुस्सा नहीं रहा था कि चलो कम से कम उस आदमी ने उसकी मदद करने की कोशिश तो की थी। फिलहाल झलक उसे बोली, अच्छा ठीक है, अब तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मेरी वजह से पहाड़ी से गिर गए तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से मछली बनाती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। ये बोलकर झलक मछली पकड़ने लगी थी और मीरा के साथ झलक मछली पकड़ते हुए काफ़ी मस्ती कर रही थी। वहीं वो नकाबपोश आदमी अपने मास्क के पीछे से चमकती आंखों से झलक को देख रहा था और उसका इलादा था कि इस वक्त वो चाकू और खंजर से घूमकर झलक का जान ले ले, क्योंकि झलक ने अब उसे सांप काटने से बचाया था तो इसीलिए उसने उसकी कोई खास मदद नहीं की और उसे वहीं छोड़कर वापस नीचे उतर गया था। उसकी ओर उस नकाबपोश आदमी वहां से उठकर चला गया था। वहीं सिद्धार्थ अब झलक के साथ था और उसे पूछ रहा था कि उसकी तबीयत अब कैसी है। झलक अपना सर हिलाते हुए कहा था कि वो काफी हद तक ठीक है। और तब झलक और सिद्धार्थ जब बरसती हुई बारिश को देख रहे थे, पहाड़ इलाकों पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी जिससे हर जगह कीचड़ और नदी नाले काफी ज्यादा भर चुके थे। तब झलक फिक्रमंद होते हुए बोली थी, पता नहीं गांव का जो स्कूल है बच्चों का वहां पर क्या हो रहा होगा, गांव के बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे। तब झलक सिद्धार्थ की ओर देखकर बोली, चलो ना सिद्धार्थ एक बार गांव के स्कूल में देखकर आते हैं, बच्चे वगैरह सब ठीक हैं या नहीं, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, और अगर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसे जरूर ठीक करवा देना। अब झलक की ये बात सुनकर सिद्धार्थ वाकई इम्प्रेस हुआ था, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बोला था और फिलहाल वे लोग जल्दी ही अब स्कूल की तरफ चल दिए थे। तभी सिद्धार्थ झलक को एक जगह रोकते हुए बोला, रुको मेरा कुछ सामान रह गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अब झलक सिद्धार्थ के आने का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही सिद्धार्थ आया, उसने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों में इस वक्त दवाई का बॉक्स था। उस बॉक्स में कुछ ऐसी दवाइयाँ थी जो किसी भी घाव पर लगाने पर उसे जल्दी भर देती हैं, घाव के निशान को मिटा दिया करती हैं। अब वो दवाइयाँ लेकर झलक को देते हुए बोला, ये लो ये दवाइयाँ तुम्हारे घाव को भरने में मदद करेंगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो, क्योंकि मुझे अभी खबर मिली है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से गांव में लैंडस्लाइड हो गई है। इतना ही नहीं, स्कूल की छत गिरने के साथ साथ गांव के कई कच्चे घरों की छतें भी ढह गई है, काफी भारी नुकसान हुआ है, बहुत से लोग मलबे में दब गए हैं, और तुम्हारी तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें आराम करना होगा, मैं खुद जाकर वहाँ सब लोगों की हालत देखता हूँ और मदद करता हूँ। अब ये सुनकर झलक पूरी तरह से हैरान हो गई थी, साथ ही उसकी आंखें नम हो उठी ये सुनकर कि स्कूल की छत तक गिर गई है। उसे याद आया कि जब वो गांव में पढ़ा करती थी तब उसका भी एक अच्छा स्कूल था, भारी बारिश होते ही वहां हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं स्कूल की छत गिर ना जाए, और आज ये सच होता देखकर झलक को कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आ गई थी। वो बोली, सिद्धार्थ प्लीज मुझे भी अपने साथ जाने दीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
लेकिन सिद्धार्थ ने उसे पूरी सख्ती से मना कर दिया था। उसने कहा कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोचे भी नहीं। उसने झलक को और मुखिया जी के घर पर ही आराम करने के लिए कह दिया और खुद कुछ आदमियों को लेकर स्कूल की ओर रवाना हो गया। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि कितने सारे घर गिर गए हैं और स्कूल की पूरी मंजिल भी ढह गई है, तो सभी लोग भारी मात्रा में मदद के लिए जाने लगे थे। सिद्धार्थ भी जा चुका था और उस वक्त वहां कोई नहीं था, लेकिन झलक तो झलक है, भला वो इस तरह अकेली कैसे रह सकती थी, वो भी इतने सारे लोगों को मुसीबत में छोड़कर।